श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यहूदा नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इसका मुख्य विषय है विश्वास के लिए संघर्ष। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
सुकून मिलता है उनके चरण पे हो मस्तक, दिल हमेशा कहता है। सिर्फ उनके नाम से मन को सुकून मिलता है, उनके चरण पे मस्तक हो दिल हमेशा कहता है।
अच्छे कर्म हो सदा हमसे, शांति की
संदेश लेकर यीशु यहाँ पर आए थे, प्यार ही प्यार सिखाने हमको यीशु यहाँ पर आए थे।
मर के जी उठे वो अपनी यार छोड़ गए, मर के जी उठे वो अपनी यादें छोड़ गए।
ईश्वर का संदेश लेकर यीशु यहाँ पर आए थे, प्यार ही प्यार सिखाने हम।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रियों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों नए नियम में से यहूदा की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और इस पत्री में हम सब देख रहे हैं कि यहूदा हमें सचेत कर रहा है कि हम किस प्रकार विधर्मियों से सावधान रहें। तो मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, सुनते और सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। यहूदा की पत्री के द्वारा हम सबों को सिखाएं, समझाएं और अपनी निकटता में लेकर के आए। आज के इस अध्ययन को आपके हाथों में सौंप देते हैं और प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम सब यहूदा की पत्री में देख रहे हैं कि यहूदा विश्वासियों को उद्धार के विषय पत्र लिख रहा था, परंतु पवित्र आत्मा ने उसे रोका और उसे प्रेरित किया कि वह उन्हें उनके विश्वास के विषय में दृढ़ रहने के बारे में लिखे, क्योंकि आने वाले समय में गलत शिक्षाओं के कारण उसका विश्वास पथ भ्रष्ट हो सकता था। अतः वह उनसे कहता है कि वे अपने उस विश्वास के लिए यत्न करें जो पवित्र जनों को एक ही बार सौंपा गया था, और वही विश्वास सदा का होना चाहिए। यहूदा के समय ही में अभक्तों का कलीसिया में भी प्रवेश आरंभ हो गया था, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही लिखा गया था। इसका अर्थ है कि अन्य लेखकों ने इसकी चेतावनी पहले ही दे दी थी। मेरे प्रियों, आगे हम इस पत्री में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 4 पद में, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। लिखा है चुपके से हम में आ मिले हैं। चुपके से आने का अर्थ है गुप्त द्वार से प्रवेश करना। विधर्मी कलीसिया में इस प्रकार प्रवेश कर गए थे। मैं अपनी युवावस्था में देखा है कि कलीसिया विश्वास में दृढ़ थी, परंतु जब मैं बाइबल अध्ययन के लिए गया तब मैंने देखा कि पादरी विश्वास के प्रत्येक पक्ष का इनकार करते हैं, और आगे चल करके मैंने देखा कि ऐसी मानसिकता बढ़ती ही जा रही है कलीसिया की सेवा में। मैंने देखा है कि ऐसे लोग कलीसिया को अपने प्रभाव में लिए हुए थे, वे गुप्त द्वार से भीतर आए थे। मेरे प्रियो, कहते हुए तो कुछ ऐसा लगता है कि उनका विश्वास कुछ और था और वे कहते कुछ और थे। वे सामने के द्वार से नहीं आए थे, अर्थात वे अपनी मान्यताओं को प्रकट नहीं करते थे। हमारे अनेक भले सदस्य ऐसों के भ्रम जाल में फंस गए हैं और फंस जाते हैं। धर्मशास्त्र उनके बारे में चेतावनी देता है। पौलुस ने कुरुंथ के विश्वासियों को लिखा, 2 कुरुंथियों के पत्र 11 अध्याय उसके 13 से 15 पद में, ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी और नई बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। मेरे प्रियो, रूप धरने का अर्थ है बाहरी दिखावे द्वारा प्रकट करना। यह शैतान की विधि है, वह कुछ और होता है और दिखाता कुछ और है। इस विधि द्वारा मैंने अच्छी अच्छी कलीसियाओं को मुक्त विचार के जाल में फंसते हुए देखा है। यह संसार की सबसे अधिक धोखे की विधि है। एक बहुत ही अच्छी कलीसिया थी जिसमें परमेश्वर का वचन सुनाया जाता था और लोग उद्धार पा रहे थे। उसके चले जाने के बाद दूसरा पास्टर आया। समिति ने उसकी मान्यताओं के विषय में पूछा तो उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह विश्वास की सब शिक्षाओं को मानता है। उसके परीक्षण प्रचार से भी प्रकट हुआ कि वह विश्वास में दृढ़ था। उसने शायद प्रसिद्ध प्रचारकों के उपदेशों में से प्रचार किया था। उसका प्रचार सुनकर कलीसिया ने उसे अपना पास्टर नियुक्त किया और शीघ्र ही उन्होंने देखा कि उनका पास्टर मुक्त विचारक पास्टर है। परंतु कलीसिया किसी पास्टर को बाहर कर देना अच्छा नहीं मानती है, अतः वे उसे सहन करते रहे। मैं ऐसी 2-3 कलीसियाओं के बारे में जानता हूं जो ऐसे पाखंडियों के कारण नष्ट हो रही हैं और नष्ट हो गए हैं। मेरे प्रियो, स्मरण रखें, यहूदा कहता है जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। दूसरे शब्दों में यहूदा कहता है, मैं तुम्हें कोई नई बात नहीं कहता, अन्य प्रेरितों ने तुम्हें इसकी चेतावनी दे दी है और आने वाले विधर्म के प्रति सतर्क किया है। पौलुस ने इन पाखंडियों के विरुद्ध लगातार चेतावनी दी है। अपनी अंतिम भेंट में पौलुस ने इफिसियों के प्राचीनों को चिताया था, प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 29 से 31 पद में, जहां पर लिखा है, मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िये तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष दिन और रात आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। यद्यपि पौलुस उन्हें पहले से चेतावनी दे चुका था, अंततः वे झूठे शिक्षकों के भ्रमजाल में पढ़ ही गए। पौलुस ने युवा प्रचारक तिमोथियुस को भी चिताया था, 2 तिमोथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 5 और 6 पद में। वह कहता है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। मेरे प्रियो, आज महिलाओं के बाइबल अध्ययन का प्रयास किया जा रहा है और मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूं, परंतु उनमें अति सावधान रहना है क्योंकि कोई न कोई पाखंडी उनमें घुस आएगा। जी हां, कलीसिया के इतिहास में एक भी महिला बाइबल विद्वान नहीं रही है, जो एक विचित्र बात है। दूसरी ओर यह भी सच है कि स्त्रियों ने झूठी शिक्षाओं और पूजा पद्धतियों में मुख्य भूमिका निभाई है। मैंने अनेक प्रचारकों को पुकार करते हुए सुना है कि कलीसिया से वे अलग हैं। कलीसिया के साथ वे सहयोग न करने वाले महिलाओं के बारे में कह रहे हैं। जी हां, कलीसिया के साथ सहयोग न करने वाले महिला अभियानों में घोर संकट आ गया है। मैं यथासंभव प्रयास करता हूँ कि कलीसियाओं के सहयोग में कार्य करूं, परंतु उन्हें बाइबल आधारित कलीसिया होना है। जिस कलीसिया को पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है उसे विशेष सावधानी की आवश्यकता भी है, क्योंकि वहां निश्चय ही शैतान चुपके से आ जाएगा। वह ज्योति के प्रचारकों का रूप धर कर आएगा और आपको भ्रम में डाल देगा। किसी भी अभियान की अग्नि परीक्षा यह है कि वह प्रभु यीशु के विषय क्या शिक्षा देते हैं। यदि वे प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करते हैं तो आप उन्हें त्याग दें, परंतु सावधान रहें, क्योंकि प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करने के अनेक पहलू हैं जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रभु यीशु को संसार का मुक्तिदाता मानते हैं। पत्रस भी इसकी चेतावनी देता है। दूसरा पत्रस की पत्री 2:1 में लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। गलातियों के पत्र 2:4 में पौलुस फिर से कहता है, ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। अतः मेरे मित्रों, हमें उस हर एक गतिविधि पर सावधानी से ध्यान देना है जिसे परमेश्वर आशीष दे रहा है। कलीसिया से पृथक सेवा करने वाली संस्थाएं शैतान के भ्रमजाल में पड़ सकती हैं। कहता है, ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु का इनकार करते हैं। मेरे प्रियो, ये अभक्त दो काम करते हैं। पहला, वे अनुग्रह को विकृत करते हैं, उसका इनकार करते हैं, अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का वे इनकार करते हैं। हम देखते हैं अभक्त। अभक्त का अर्थ है कि वे परमेश्वर को अपने जीवन से अलग कर देते हैं। अतः अति महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के वचन के शिक्षक को परखा जाए कि वह ईश्वर भक्त है या नहीं। एक ईश्वर भक्त दंपति की बात सुनकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मैं उन्हें बुद्धिमान समझता था, परंतु वे एक ऐसे बाइबल शिक्षक की प्रशंसा के पुल बांध रहे थे जिसका संबंध किसी और स्त्री से था। वे उसके उस आचरण को अनदेखा कर रहे थे। हमें उनके जीवन को देखना है कि वे परमेश्वर को क्या अपने जीवन से बाहर किए हुए हैं। आगे शब्द आया है लुचपन। एक अति रोचक शब्द है। इसे हम विलासिता कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नियम निष्ठा और दीनता नहीं है। आप अपनी इच्छा पूरी करते हैं, चाहे किसी की भावनाएं आहत क्यों ना हो जाएं। यहूदा कहता है कि ये अभक्त हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में अनैतिकता में बदल देते हैं। पौलुस ने भी परमेश्वर के अनुग्रह को निरंकुश जीवन जीने की अनुमति के संकट के प्रति चेतावनी दी है। गलातियों की पत्री 5:13 में, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। मेरे प्रियो, आज की नई नैतिकता ने बाइबल की आज्ञाओं को त्याग दिया है। किसी ने अति उत्तम बात कही है, आज संसार के साथ समस्याओं में से एक है कि मनुष्य यौनाचार को प्रेम, पैसे को बुद्धि और रेडियो को सभ्यता कहता है। स्वर्गीय डॉक्टर वालेस पेट्टी के अनुसार आज की मान्यता है परमेश्वर अपनी इच्छा का उत्पाद है। धर्म सत्य से बचना है। मनुष्य एक महिमामय बंदर है जो बहुत प्रश्न पूछता है और बहुत सी लालसाओं को दबाता है। सदाचार पसंद का विषय है, प्रेम कला है, जीवन अपवाद है। हमारे आज के युग में मनुष्य का यही विचार है। निरंकुशता जो हम देखते हैं वह न्याय का उग्र उतावलापन है। यह स्वैच्छिक बुरी भावना है। विवाह को अनावश्यक समझकर उसका उल्लंघन किया जाता है। आप निर्विवाह साथ रहना चाहते हैं और अनैतिक काम करना चाहते हैं। उसकी नैतिकता जो परिवार बनाती है, राष्ट्र का निर्माण करती है, उसे तुच्छ समझते हैं। हमें कलीसिया में शिक्षा देने वालों के प्रति अति सावधान रहना है। क्या वे भ्रष्ट नैतिकता की शिक्षा दे रहे हैं? यहूदा कहता है कि हम इस विषय में अति सावधान रहें। मेरे प्रियो, पाखंडी की एक और पहचान है कि वह परमेश्वर और प्रभु यीशु का इनकार करता है। वह उनकी बातें जो करता है, परंतु वे क्या हैं और कौन हैं, इसको स्वीकार नहीं करता है। यहूदा के युग में तत्वज्ञानी सिखाते थे कि शरीर और पदार्थ सब अपवित्र हैं, केवल आत्मा ही शुद्ध है। इसका निष्कर्ष यह निकलता था कि शरीर कुछ भी करे, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। मनुष्य अनैतिकता पाप के लिए स्वतंत्र है, वरन पाप प्रदर्शन से भी अंतर नहीं पड़ेगा। यह अनुग्रह को लुचपन में बदलता है। आज की नई नैतिकता प्राचीन तत्व ज्ञान जो कलीसिया की झूठी शिक्षा थी उससे भिन्न नहीं है। तत्व ज्ञान का दूसरा पक्ष था सच्चे परमेश्वर और मनुष्य, प्रभु यीशु का इनकार। यह ख्रिस्त विरोधी की पहचान है। यूहन्ना ऐसे मनुष्यों को अपनी पत्री में मसीह का विरोधी कहता है। ख्रिस्त विरोधी की आत्मा प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं करती है। मेरे प्रियो, इस पद के विषय के महत्व के कारण मैंने इस पद पर बहुत अधिक चिंतन किया है। झूठी शिक्षाओं द्वारा विश्वास से भटक जाने की चेतावनी देने के बाद यहूदा झूठी शिक्षाओं के 6 उदाहरण देता है। मैं आगे बढ़ने से पूर्व विधर्म की परिभाषा आपको देना चाहता हूं। यूनानी भाषा के मूल शब्द का अर्थ है दूर होना या अलग होना। थिस्लोनिके की कलीसिया को लिखे पत्र में पौलुस जब इसी शब्द को काम में लेता है तो मेरे विचार में इसके 2 अर्थ हैं। इसका पहला अर्थ है कलीसिया का संसार से अलग किया जाना, क्योंकि पहली पत्री में वह कलीसिया के उठाए जाने की चर्चा करता है। पहले कलीसिया उठाई जाएगी और फिर परिपूर्ण धर्म त्याग होगा। लूका 8 अध्याय के 18 पद में प्रभु यीशु ने पूछा, मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? अर्थात कदापि नहीं। यह तब ही संभव होगा जब सच्चे विश्वासी पृथ्वी पर से उठा लिए जाएंगे। उस समय संपूर्ण धर्म त्याग होगा। मेरे मित्रों, आज यहूदा अपनी इस पत्री के द्वारा हमें सचेत कर रहा है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए किस प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं। नैतिकता अनैतिकता की बातें तो हम करते हैं, हम अपने कलीसियाओं में किस प्रकार के लोगों को स्वीकार कर रहे हैं। आज यहूदा हमें कहता है कि उन्हें परख करके देखना है ताकि हम जानने पाए कि वो परमेश्वर के सच्चे लोग हैं या नहीं। मेरे प्रियो, इसी के साथ यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
है